नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के इस सत्र में आप सभी दर्शक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं, देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। हमारे आध्यात्मिक जो जीवन है उसके लिए हमको चाहिए सुख, शांति, आनंद, खुशी, और हम इसकी तलाश के लिए कहीं ना कहीं व्यसन में फंस रहे, व्यसन में उसे ढूंढ रहे हैं। पिछले कई सत्रों से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे हम इससे निपटे, कैसे हम इससे बाहर निकले। आज भी इस चर्चा को हर बार की तरह डॉक्टर सचिन के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति।
जैसे हमने पिछले कई सत्र से बात कर रहे हैं कि कैसे हमको इसमें से निकलना है, प्यार चाहिए, जो खालीपन है उसको हमको भरना है, और भी हम क्या कर सकते हैं।
हम देख रहे थे मैनेजमेंट ऑफ एडिक्शंस,
जी
जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से देखा कि एडिक्शन एक पुरानी बीमारी है, क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। व्यक्ति थोड़े समय के लिए छोड़ता है, वापस चालू करता है। इसके लिए हमको केवल दवाई नहीं बल्कि काउंसलिंग भी करना है, और
जी
व्यक्ति का ही नहीं लेकिन घर वालों का, दोस्तों का भी काउंसलिंग ज़रूरी है, ताकि
जी
वो सपोर्ट सिस्टम बन के आगे आए।
जी
इसी कड़ी को हम आगे लेते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे दवाइयाँ काम करती है और कैसे प्रिवेंशन का रोल बहुत ज़रूरी है।
प्रिवेंशन का रोल।
हाँ,
ओके
क्योंकि बाय द वे नशा हो जाए और फिर उसको निकाले, इसमें काफी मेहनत लगती है।
हाँ, ये बहुत आपने सही बात कही कि हम अंदर चले जाए फिर उसमें से बाहर निकले, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। निकलना भी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उसको प्रिवेंट ही करना है तो कैसे करना है।
इसलिए ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग
जी
और पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था, हम ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर।
ओके
ऐसे कहते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
जी
क्योंकि हमने देखा है ये जो सेइंग है ये खास एडिक्शन के लिए बहुत लागू पड़ती है। बाकी बीमारी में तो फिर भी आप ठीक हो सकते हैं,
ठीक
पर
है
एडिक्शन इज़ वेरी टफ
जी
टू ट्रीट और रिजल्ट बहुत कम है और फिर से लोग चालू करते हैं। इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमको एक बात पता चली है कि यूथ जो है, स्कूल और
जी
कॉलेज के बच्चे, ये टारगेट है इस इंडस्ट्री के।
जी
तो इंडस्ट्री इनको कम उम्र में 18 साल के पहले पकड़ने की
हाँ
कोशिश करती है। तो हमने आ रहा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माई स्कूल एडिक्शन फ्री स्कूल।
हाँ इसको हमने पहले भी एक बार मेंशन
हाँ,
किया था।
माई कॉलेज एडिक्शन फ्री
जी
कॉलेज। तो यहाँ पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। साथ में हमने देखा कि पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि हर चीज़ को आपको लाके देने की जो आपकी दिल होती है कि मेरे को जो नहीं मिला मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, तो जो
हाँ
उसने मांगा वो उसको देने की जब हम आदत डालते हैं तो शायद उसको फिर आगे चल के उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता
हाँ
है
जी
और वो गलत रास्ते पर जाने के चांसेस हैं। तो भारत में जैसे कि मान्यता है कि 5 साल तक बच्चे को आप बहुत प्यार दो,
जी
5 से 10 के बीच में आप उसको डिसिप्लिन सिखाओ
हाँ
और 10 साल के बाद आपको उसका दोस्त बन जाना चाहिए।
आफ्टर
पहले
15 ईयर।
15 बोलते थे, अभी हम कहते हैं 10 साल।
अच्छा
क्यों? क्योंकि आजकल मीडिया एक्सपोजर बहुत है,
जी
तो उनको बहुत सारी बातें कम उम्र में पता चल जाती है।
जी
सो कंपेयर टू हमारे जब जनरेशन थी, उसके मुकाबले ये लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं,
जी
क्योंकि आजकल गूगल है या इंटरनेट है। जो पहले हमको साइबर कैफे में जाना पड़ता था, आज हाथ में आ गया आपके।
ये है, इसका रोल है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस भी थोड़े फास्ट होते हैं, ऐसा कुछ
यस
है।
यस,
ओके
बॉडी आपके रिएक्ट कर रही है ना, चेंज हो रहा है, जो
ओके जी
इन्फॉर्मेशन जा रहा है उसके साथ बॉडी रिएक्ट हो रही है। तो मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है या जानकारी मिलती है जल्दी।
जी
और फिर बच्चों का एक गुण होता है क्यूरियोसिटी,
हाँ
तो वो उसका एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते
जी
हैं या प्रभावित होते हैं फिल्म स्टार से कि मेरा
जी
हीरो इस तरह से स्टाइल से सिगरेट पी
हाँ
रहा
ये
है।
इस बात पर भी हमने
तो
गहराई से देखा
हाँ,
था पहले।
तो प्रेस्टीज इश्यू जो बनाया है
जी
और इनको बताया जाता है यूथ को कि दिस इज द वे टू लिव लाइफ,
जी
और ये लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, स्टैंडर्ड वाले है। और शब्द भी अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ऊंचे लोग,
ऊंची
ऊंची
पसंद
पसंद है, या आपका स्टेटस सिंबल है, तो
जी
उसके साथ स्टेटस जोड़ देते हैं, पर्सनालिटी जोड़
जी
देते हैं। तो यूथ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ही हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो
एज अ
पेरेंट्स को,
पेरेंट्स
पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा, लड़का या लड़की क्या करती है दिन भर, उसके
जी
दोस्त कौन से हैं। और उसका रुझान किस तरफ है, वो उसके नेचर में कुछ चेंजेस हमने ला
जी
देखे हैं क्या? पहले वो बात करता था, अब अकेला रहता है, या अपने कमरे में ज्यादा देर वक्त बिताता है,
हाँ,
या
उनके
उसके,
दोस्त
हाँ,
कौन से हैं इस
और
पर भी
वो,
ध्यान देने की
यस
जरूरत
यस
है।
यस यस, ये बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए एज अ फ्रेंड,
जी
और उनको एनकरेज करना चाहिए कि उनके जीवन में अगर ऐसी कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसके तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं तो वो शेयर करें।
जी
अगर हमारा एटीट्यूड बहुत रिजिड है या बहुत लूज है, दोनों नहीं चलेगा, दोनों में नुकसान है।
बिल्कुल
हमको
सही
बैलेंस वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, उनके साथ बात करते रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उनके ऊपर नज़र इसलिए इस तरह से रखनी चाहिए कि उनको वो ऑफेंडिंग भी नहीं लगे। ऐसे नहीं कि मेरा पुलिसिंग हो रहा है बहुत
जी
और मेरे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
बैलेंस
तो
होना जरूरी
बैलेंस
है।
होके बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरा लड़का या लड़की कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है।
जी
इसके लिए उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो बात करे, अपनी बात को रखे पेरेंट्स के सामने, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बाय द टाइम पेरेंट्स को पता चलता है तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी रहती है,
जी
और फिर इस उम्र में एडोलेसेंस में या टीन के ऊपर वो फिर चैलेंज करते हैं पेरेंट्स को भी कि दिस इज माय
हाँ
लाइफ, ये मेरी
जी
जिंदगी है, मुझे अपनी तरीके से जीने दो।
हाँ, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, सबको लगता है कि हमको
तो
बहुत रोक टोक हो रही है।
हाँ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है
जी
उस समय पे। तो पेरेंट्स को, क्योंकि टीचर्स के साथ जब हम बात करते हैं, टीचर्स ये बोलते हैं कि हमारे पास वो 6 से 8 घंटा रहते हैं
जी
और घर में पेरेंट्स के साथ वो 16 घंटा रहते हैं। तो अगर हमारा रोल अगर 10% है तो पेरेंट्स का रोल 20% है, क्योंकि
जी
ज़्यादा समय पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अभी पेरेंट्स बोलते हैं हम तो काम धंधे पर रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, हमने तो अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमने कोचिंग क्लास को डाल दिया, हम कितना टाइम दें,
या हमारी जिम्मेदारी
हमें
जैसे हमने
जिम्मेदारी
पूरी कर रहे हैं
पूरी
हम
कर
लोग।
रहे हैं। तो ऐसा बोल के नहीं चलेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट आपको क्वालिटी टाइम दे के उनके साथ बात करनी पड़ेगी बाय द टाइम, क्योंकि आजकल माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, है
जी
ना, घर चलाना है। तो अगर हम टाइम नहीं दे पाए उनको
जी
क्वालिटी टाइम, उनके पास अटेंशन नहीं दिया, उनके साथ बातचीत नहीं की अच्छी तरह से, तो हो सकता है हमसे लेट हो जाए, बाय द टाइम हमको पता चले
जी
तो काफ़ी देर हो चुकी
और
है।
छोटी उम्र में ये सब करने का, ये सब लेने का चांसेस
यस,
बहुत अधिक
बहुत
है
होता है,
कंपेयर टू एडल्ट लाइफ से।
क्योंकि मेरे पास जो भी केसेस है, मे भी हमारे पास पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, वो कहते हैं माँ बाप घर पे नहीं, बेटा अकेला घर पे है,
जी
टीवी है उसके पास, इंटरनेट
सब
है,
कुछ है
मोबाइल है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा,
जी
है ना। और अभी की जनरेशन बहुत क्विक है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में, तो बहुत सारा ध्यान पेरेंट्स को देना
जी
चाहिए, और इसमें हम उनको एम्पावर करते हैं
जी
कि किस
जी
तरह से बात करना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको उसको फ्रेंड्स के रूप में ही लेना चाहिए,
जी
डोंट गो देयर एज अ सम,
पेरेंट चाइल्ड
हाँ
रिलेशन का हक बताएंगे तो कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं,
नहीं
तो ये
सुनते
बहुत
हैं।
इम्पोर्टेंट है उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रहे पेरेंट्स का।
मेरे को तो अभी मैंने देखा, शायद हमको धक्के की बात है कि वो लड़का था 17 या 18 साल का,
जी
और उसकी माँ आ रही थी मेरे पास आए खास मिलने का, और उसने कहा देखो पति भी शराब पीता है, अभी वो मेरा सुनता नहीं। मैंने कहा कम से कम बेटे के सहारे तो मैं जी लूँगी, लेकिन अभी ये बेटा शराब पीना चालू किया है।
जी
और जब उनको बिठाया तो बेटे ने कहा आप मम्मी को समझाओ कि मेरे लाइफ में इंटरफियर नहीं करे, दिस इज माई लाइफ,
जी
मुझे मेरा जीवन जीना है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। अभी शी इज ट्रैप, क्योंकि ना
जी
पति से उसको सपोर्ट मिल रहा है, एटलीस्ट बेटे के साथ तो बेटा भी ऐसा है, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि शी इज ऑल्सो वर्किंग, हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग,
जी
और बेटे को फिर जितना अटेंशन देना चाहिए, वो समझते हैं कि हमने उसको अच्छे स्कूल में डाला, कॉलेज में
जी
डाला, उसको पैसा दिया, तो हमारी जिम्मेवारी हो गई। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए खास, और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए, तो हम इन दोनों को एम्पावर करते हैं।
अच्छा, तो
और
आपका
इसमें
जो ये कैंपेनिंग चल रहा है ये
यस,
पूरा ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू मेडिकल विंग के थ्रू, उसके तहत
उसके
आप
तहत हम ये प्रोग्राम रखते हैं, अवेयरनेस फॉर चिल्ड्रन स्कूल
जी
एंड कॉलेज, फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो,
ओके
तब तीनों को हम सेम प्लेटफॉर्म पर लाके उनकी चर्चा रखते हैं,
अच्छा
और फिर उसमें से लीडर तैयार करते हैं। ये प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है
बाद में फिर इलाज की जब बात आती है, जब वो एडिक्शन के अलग अलग
जी
स्टेज पर होते हैं, तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आई है,
ओके
अगर हम तंबाकू का ही ले तो
जी
तंबाकू का इलाज के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन आजकल हमारे पास है। च्युइंगम के रूप में इस्तेमाल करें, निकोटिन च्युइंगम
अच्छा
आते हैं या लोजेंजेस आते हैं या पैच आता है,
अच्छा
जिससे कि क्रेविंग होती है वो कम कर सकते हैं।
ओके
और कई लोगों को नहीं छूटता है तो आजकल वर्निक्लिन और ब्यूप्रोपियन नाम की ऐसी गोलियां हैं जो लेने के बाद आपका क्रेविंग और कम हो सकता है, पर अंडर
अच्छा
गाइडेंस और डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसको लेना चाहिए। तो ये तंबाकू के बारे में हो गया। और तंबाकू छोड़ने के बाद कुछ लोगों को जैसे पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि
जी
सुबह उठते ही वो सिगरेट लेते हैं या तंबाकू लेते हैं तो उनका पेट साफ होता है, तो टेम्पररी उनको पेट साफ करने की दवाई दी
जी
जाती है। ऐसे ही शराब के लिए जो दवाई बनती है तो वो ऐसी दवाई है कि अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। इसको एंटाब्यूज कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट उसके साथ अगर शराब पीता है तो उसके शरीर में एल्डिहाइड नाम का एक केमिकल बनता है जो पॉइजन होता है,
जी
और उसने अगर शराब पिया तो उसको बहुत उल्टी होता है,
ओके अच्छा
हाथ और चेहरा लाल हो जाता है, कांपने लगता है, तो उसके अंदर डर बैठ जाता है कि अगर मैंने शराब पिया तो ये हो जाएगा। इसको एंटाबियस बोलते हैं।
अच्छा
तो उस बहाने वो दूर जाता है शराब
ओके
से और शराब छोड़ देता है। पर ये दवाई अंडर गाइडेंस ही देना चाहिए, क्योंकि
जी
अगर ये गलत डोज में हाई डोज में दिया गया तो जान को खतरा हो सकता है।
ओके
तो इस तरह से शराब की दवाइयाँ बनती है। फिर शराब के साथ एसोसिएटेड जो चेंजेस होते हैं, जैसे रात को नींद नहीं आती है,
जी
बहुत लोग होते हैं जो शराब लेने वाले शुरुआत में एक पैक से नींद आते, फिर दो से काम नहीं होता,
फिर
तीन,
बहुत लंबे लेने के बाद भी नहीं आती
हाँ,
है
इसको टॉलरेंस बोलते हैं। माना आपके
जी
शरीर को उसकी आदत लग गई, तो पहले जो दो पैक में अच्छा लगता था अब उसे नहीं अच्छा लगता, तो अभी दो का तीन हो जाता है।
जी
तो जब ये छोड़ते हैं तो उनका नींद डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको थोड़े समय के लिए नींद के लिए कुछ दवाइयाँ देनी
दवाइयों की
पड़ती हैं,
जरूरत
जिनको
है
ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं, जिससे हाथ पैर कांपना भी ठीक हो
जी
जाता है। फिर साथ में इनको कुछ विटामिन की कमी रहती है, तो वो
अच्छा
विटामिन जैसे थायमिन नाम का विटामिन, तो उसका भी पूर्ति किया जाता है। मल्टी विटामिन की दवाइयाँ उनको दी जाती है जिससे उनको शरीर को ताकत मिले। और डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें बोलते हैं कि आपके शरीर से पूरा जो ड्रग है
जी
वो वॉश आउट होने तक आपको संभालना होता है, तो
अच्छा
वो हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करके इसका
जी
इलाज होता है। हार्ड ड्रग्स के लिए बहुत अच्छी दवाई आजकल आ रही है, बिपरिनॉर्फिन है। तो जैसे कोई हेरोइन ले रहा है
जी
तो उसका हेरोइन छुड़ाना है तो मेथाडोन या बुप्रिनॉर्फिन, ऐसे दो गोलियां हैं जिसको अंडर गाइडेंस ही देना चाहिए, और उसके
जी
स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं से लेना चाहिए।
ओके
क्योंकि मुझे याद है कि पंजाब में जब मैं गया था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या और जगह पे जहाँ पर ये एडिक्ट्स बहुत होशियार रहते हैं,
जी
ये आते हैं बोलते नहीं हमको चाहिए गोली, हम छोड़ना चाहते हैं, और वो दवा महंगी होती है, नशा
ओके
छुड़ाने वाले, वो 30 रुपए की एक गोली होती है, तो उनको
ओके
दिन का पूरा वो उनका कोर्स रहता है और
जी
10-15 दिन का कोटा होता है। ये लोग क्या करते हैं, वो सब दवाइयाँ लेते हैं और बाहर जाके उसको बेचते
बेचते
हैं,
ताकि उसमें से जो पैसा मिले
उससे ड्रग्स
फिर
लेते हैं।
उससे ड्रग्स खरीद सके जी
तो बहुत संभाल के चलना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, और ये दवाइयाँ गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका भी कुछ
इफेक्ट हो सकता
इफेक्ट हो
है
सकता है। तो वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन और साइकियाट्रिस्ट या जिनको ट्रेनिंग दी गई है वही लोग इसका इस्तेमाल करें। पर इससे क्रेविंग कम होता है,
अच्छा
आपकी जो तलब होती है ड्रग्स लेने की वो इन दवाइयों से कम हो जाती है। ऐसे ही बाकी के भी कई सारे दवाइयाँ हैं, पर हम यही कहेंगे कि ये सब इलाज डी एडिक्शन सेंटर में साइकियाट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट के गाइडेंस के
गाइडेंस
अनुसार
में
ही
लेना आवश्यक है।
आवश्यक है।
जैसे आपने पिछले कड़ी में भी हमने बात की थी कि आप बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं व्यक्ति को जो एडिक्शन में है, तो ऐसे कुछ सजेशन आज हम प्रैक्टिकल में करेंगे ताकि जिनको भी व्यसन है वो इसमें से उसको गाइडेंस मिले और वो इसमें से निकल सके।
जब हम काउंसलिंग करते हैं तो
जी
काउंसलिंग के कई सारे सेशंस होते हैं, तो पहले सेशन में मैं पूरा हिस्ट्री लेता हूँ।
ओके
तो उस हिस्ट्री में मैं ये नहीं लेता हूँ कि उसने नशा कैसे चालू किया, मैं एज अ पर्सन उसको जानने की कोशिश करता हूँ।
ओके
एज अ पर्सन ये बचपन से कैसा था, बचपन में इसका नेचर कैसा था, ये शाय था माना बहुत कम बोलता था या एक्सट्रोवर्ट था, दोस्त इसके कितने थे,
जी
पढ़ाई में कैसे था, है ना, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, घर का माहौल कैसे रहा है,
बिल्कुल सही,
इसको घर से प्यार मिला है या नहीं मिला है ना,
मतलब पूरी जानकारी हमको
पूरी
लेनी
जानकारी
है।
लेते हैं और पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ उम्र में उसका दोस्तों की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पीयर प्रेशर या फैशन के लिए या क्यूरियोसिटी के रूप
जी
में जो भी कारण है जिससे ये चालू करता है, आ फिर चालू करने के बाद अभी वो कौन से स्टेज पर पहुंचा है एडिक्शन पे, जहां पर वो नशा ही उसके लिए दवा बन चुकी है,
जी
कि या फिर वो मिडिल स्टेज में है या अर्ली स्टेज में है।
जी
उस अनुसार हर एक को हम सजेशन अलग अलग देते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर उनको बताता हूँ कि एक ऐसा समय था कि आप इस नशे के बगैर जी रहे थे, मतलब इसके बगैर भी आप अच्छी तरह से जी रहे थे,
बिल्कुल सही,
तो
बिल्कुल
तभी का
सही
जीवन और ये नशा चालू करने के बाद वाला जीवन, आप
जी।
खुद बताओ कि कौन सा जीवन अच्छा था। नंबर वन,
हाँ
तो वो सामने से बोलते, नहीं, जब नशा नहीं करता था तो मैं अच्छा था शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मेरा सम्मान भी होता था अच्छा।
जी
नशा करने के बाद ये बातें कम हो गई, मैं अपने नजरों में गिर चुका हूँ, मेरा पैसा भी जा रहा है,
जी
स्वास्थ्य भी जा रहा है, संबंधों के ऊपर भी उसका
असर
असर आ रहा
है
है, तो ये बात वो एक्सेप्ट करते। दूसरी बात, मैंने कहा ठीक है, दूसरी बात बताओ कि आप अभी ले रहे हैं,
जी।
आपको क्या कैसा लगेगा कि अगर आपके बच्चे भी चालू करें तो?
हाँ
तो बोलते, नहीं, मैंने लिया, उठे, मेरे बच्चे नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा
जी
क्यों, आप लेते हैं ना, तो आप लेते हैं तो आपको बच्चों को भी उतना ही अधिकार है लेने
हाँ
का। आप किस मुंह से उसको बोलेंगे, समझो आपके
नहीं
बच्चे ने लिया, आप उसको कहने का आपको अधिकार है क्या? नैतिक भी अधिकार नहीं है, आप बोल नहीं सकते। बोलेंगे पापा
जी
आप क्यों ले रहे हैं? फिर
बिल्कुल सही।
एक तो लड़के ने ऐसे कहा कि पापा आप छोड़ दो, नहीं तो मैं भी पीना चालू करूंगा,
हाँ जैसे उस लड़की ने बताया मैं
हाँ
सुसाइड कर
सुसाइड कर
लूंगी।
लूंगी। पर ये लड़का तो चैलेंजिंग कि आपने लिया मैं भी लूंगा, आपके सामने लूंगा। तो क्योंकि ये देखा गया कि जिस घर में पिताजी लेते हैं नशा करते, कि उनके बच्चे नशा करने के
हाँ ये
चांसेस होते
चांसेस
हैं।
ज्यादा हो जाते हैं, देखते हैं ना पहले से।
माँ बाप से क्या गलती होती है कि वो बोलते हैं अपने बच्चे को, जा रहे बेटा थोड़ा सिगरेट लेके आ, तो ये
हाँ।
कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को कहते हैं मेरे लिए लेके आ, तो बच्चा सोचते हैं पापा ले रहे हैं, मैंने जरूर कुछ है, तो वो दो सिगरेट पापा के लिए अपने लिए लेता है। और या तो फिर जो छोड़ के जाते हैं तो बच्चे उसी को उठा के पीना चालू कर देते हैं,
हाँ क्यूरियोसिटी है उनके अंदर बहुत ज्यादा।
तो ये हम बताते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट करते कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ले। कोई भी एडिक्स मेरे को आज तक ऐसा नहीं मिला, नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी ने कहा नहीं है, हम
बच्चों के
नहीं
लिए
चाहते,
चिंता जरूर है जी।
इसका मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये बुरी चीज है। और फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि इसके बगैर आप अच्छी तरह से जी सकते हैं? थोड़ा जी सकते हैं, पर होता नहीं है। मैंने कहा फिर मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस करो कि आप इसके बगैर रहेंगे। तो कई बार
जी
इमोशनली आके बोल देते हैं, लेकिन वहां पे हमारा चैलेंज चालू हो जाता है। दो,
ओके
तो वहां पर मैंने देखा ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी
दो तीन चीजें हमको करनी पड़ती है साइमल्टेनियसली, कि एक उसको हम टेक्निक्स अलग अलग बताते हैं, एक कि जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो कन्विंस हो गया मेरी बातों से
जी
और उसको रियलाइज हो रहा है छोड़ना चाहिए, तो मैं उसको कहता आज अभी इसी वक्त आप यहाँ से जब जाएंगे अपने घर पे दोस्तों को सबको बता दो, या तो आप डेट डिसाइड करो या आज ही बता दो, बेस्ट इज आज ही, कि मैंने इसको छोड़ दिया है, मेरे को कोई पूछने का नहीं, मुझे आपसे मदद चाहिए कि इसके बाद मेरे को पूछने का नहीं इसके बारे
कि
में,
लो ये
ये लो करके ये बोल देने का सबको। अभी ये बोलने का फायदा ये रहता है कि वो पकड़ा जाता है,
हाँ
अगर बोलने के बाद चालू किया तो वो नजरों में गिर जाएगा
मतलब
लोगों के,
सबको एक बार डिक्लेयर कर देना है
डिक्लेयर कर देने
कि
का,
मैंने
नंबर
ये।
वन। हाँ,
हाँ
दूसरा, आपके पास अगर कोई चीज घर में है, जैसे सिगरेट का पैकेट है या दारू की शीशी है, वो सब फेंक देना है, घर में कोई भी उसका क्लू नहीं चाहिए, ट्रिगर नहीं चाहिए,
जी
जैसे लाइटर है, लाइटर भी नहीं रहा, फेंक देने का, घर से ही फेंक देने का किसी चीज के, क्योंकि ट्रिगर जो होता है ना, वो ट्रिगर आपकी फाइल
जी
को खोलता है।
जी
तो दूसरा, हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये सब ट्रिगर तोड़ देने चाहिए
जी
जब तक आप अंदर से शक्तिशाली नहीं करते।
जी
तीसरी बात, हम उसको बताते हैं कि आप मेडिटेशन चालू करो।
वही मेडिटेशन में आप क्या सजेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट ओनली लाइक है ना सिर्फ हम कनेक्शन, हमने देखा था पहले भी कि कैसे कनेक्ट करना है, पर एक बेसिक हमारे अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स कैसे डाले रिलैक्सेशन स्टेज में, आज वो हम आपसे प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं।
तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ये सब जो एडिक्ट्स रहते हैं,
जी
पहले भी हमने देखा कि इनको क्या चाहिए रहता है, इनको खुशी चाहिए रहता है, प्यार चाहिए रहता है, आनंद चाहिए रहता है,
जी
दे ऑल वॉन्ट राइट थिंग्स बट दे आर लुकिंग एट रॉन्ग प्लेस।
एग्जैक्टली ना, वही बात है कि सॉल्यूशन,
हाँ
स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के केमिकल सॉल्यूशंस नहीं हो
हाँ
सकते हैं।
तो हम उनको बताते हैं कि ये सब चीज़ें आप बाहर ढूंढने के बजाय, शराब सिगरेट और कहीं पे ढूंढने के
जी
बजाय, आप अपने आप के अंदर ढूंढो, क्योंकि आप आत्मा हो, शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हो। और जब आप उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तब आपके ये ओरिजिनल क्वालिटीज़ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो,
जी जी
वो अपने आप जैसे आपको महसूस होने लगेंगे ना, तो वो नीड चली जाएगी,
वो अपने आप कम
जिसमें
होना शुरू हो
काम होना
जाएंगे।
चालू हो जाती है। और फिर हमने देखा कि दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच राजयोग मेडिटेशन वर्क्स।
बहुत सुंदर,
तो जब वो आके मेडिटेशन करता है, पहले थियरी सीखता है, फिर प्रैक्टिकल अनुभव करने लगता है,
जी
तब हमने देखा कि दो तरीके से, एक तो उसको ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि राजयोग में केवल मेडिटेशन नहीं
हाँ
है,
हाँ
पॉजिटिव थॉट्स भी है। परमात्मा शिव बाबा हमसे बातें करता है कि
जी
बच्चे तुम मेरे हो, मैं पवित्रता का सागर हो, तुम पवर परम पवित्र हो,
जी जी
मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो तुम भी मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब उसको ये रियलाइज होता है, देखो एक है थेरी और एक है अनुभव, जब उसकी बुद्धि इस बात को स्वीकार करने लगती है कि मैं भी ईश्वरीय संतान हूँ, मैं
जी
सर्वश्रेष्ठ आत्मा रही हूँ परमात्मा की, अभी मेरे पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन
जी
मेरी स्मृति है, मेरे अंदर वो पड़ी हुई है, मुझे सिर्फ उसको जगाना है।
ओके
और जब वो टेक्निक सीख लेता है वो, तो हमने देखा धीरे धीरे, जैसे हमने देखा पिछले कुछ एपिसोड में, कुछ लोग एक दिन में, कुछ लोग 7 दिन में, कुछ
जी
लोग 1 महीने में, अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करें सेंटर पर आके, तो हमारा
छूटता
पूरा
जरूर
विश्वास
है,
है कि जरूर छूटता है।
उसमें नियमितता और प्रैक्टिस की अति
रेगुलरिटी
आवश्यकता
बहुत
है।
जरूरत है। और इसमें और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सजेशन, खास करके आजकल के जो बिहेवियर एडिक्शंस है,
जी
जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, तो हम कहेंगे कि ये चीजें गलत नहीं है, सिर्फ इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज करें।
जी
आप एक टाइम फिक्स करें कि आपको व्हाट्सअप कब देखना है, या आप अपना इंटरनेट या फेसबुक कब चेक करेंगे,
जी
तो उसको आप एक डिसिप्लिन रूप में इस्तेमाल करो,
बिल्कुल
ठीक है ना।
सही।
और कुछ ऐसा समय रखो, एक दिन जैसे हॉलिडे लेते हैं ना, तो वैसे एक दिन आप उपवास रखो इन सब चीजों
मुझे लगता
का।
है कि ये सब टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं आज, इसमें बहुत इजीली कोई भी जा सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति। लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरी करते हैं तो इसका केवल यूज करेंगे, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे।
वही हमने इसको देखा था कि मिसयूज और अब्यूज से हम इसको दूर
हाँ
रहेंगे,
हाँ
लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि एक दिन इसके बगैर रह के देखो आप। ये
हाँ
इसके पीछे कारण ये कहने का कि एक दिन जब आप इसके बगैर रहते हैं
तो
ना,
पता चलेगा।
तो आपको पता चलेगा कि आप कितने डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी। मैं बहुत लोग, मैं ऐसी जनरेशन से
जी
इंटरेक्ट करता हूँ कि वो 60s में है अभी, वो लोग इसके बगैर रह चुके हैं और इसके साथ भी रह रहे हैं, तो उनको
जी
मैं पूछता हूँ कि कौन सा लाइफ अच्छा था, तो उन्होंने कहा
ऑब्वियसली
जिस दिन मोबाइल नहीं था, इंटरनेट था, हम ज्यादा सुखी थे। क्यों
जी
कहते हैं कि इसके बगैर भी जिया जा सकता है।
जी
तो एक दिन मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्शियसली इसको बंद करके देखो कैसा होता है, एंड गिव टाइम टू योर फैमिली,
जी
माना इससे भी सुख है, इसकी जरूरत और सुख में फर्क महसूस करो।
जी
आप मोबाइल है या फेसबुक है या इंटरनेट है, इसके बगैर इसको छुट्टी देके अपने परिवार को या दोस्तों को आप टाइम देके देखो और उसका आनंद लेके देखो, कितना फर्क पड़ता है। और लोगों ने कहा हमको सचमुच में रियलाइज हुआ कि हम कितना मिस कर रहे थे।
हाँ, पूरा चेंज तो होता ही है, क्योंकि आप एक एनर्जी के साथ में है ना, वो
यस,
तो सारी चीजें ऐसी कि जिसमें कोई जान नहीं है।
तो ये कुछ सजेशंस हम ध्यान में रखें। और मेरा ये ऐसा मानना है, 20 साल का अनुभव ये है कि राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है,
जी
एक बहुत अच्छा पावरफुल टेक्निक है। इसको अगर हम काउंसलिंग और मेडिकेशंस के साथ में कंबाइन करें, तो वंडरफुल रिजल्ट देता है। कुछ लोगों में केवल मेडिटेशन से ही छूट जाता है, लेकिन कुछ लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती
जी
है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह से कंबाइन करें, तो हमको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और राजयोग से केवल नशा ही नहीं छूटता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होते हैं, बहुत सारे
मतलब ये
बेनिफिट
तीनों का
है।
अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो
यस,
लाइफ
सो दैट
की
वुड बी,
क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव
यस
हो सकती है। बहुत सुंदर आज आपने सारी बातें बताई, सजेशंस कैसे देने हैं, प्रिवेंशन कैसे करना है, इन सब बातों पर जो भी आपने विस्तार से हमें ज्ञान दिया आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
आज हमने देखा कि कैसे हमको प्रिवेंट करना है। स्पेशली इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जिस उम्र के दौर से वो जा रहे होते हैं उन पे इसका असर बहुत जल्दी हो सकता है। दूसरा दवाइयों का रोल कैसा है, दवाइयाँ कैसे कैसे काम करती है उसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना, और मेडिटेशन कैसे काम कर सकता है। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत सुंदर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकता है, और हम इसमें से बाहर भी जल्दी निकल सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कीजिए या फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।